नमस्कार भारत, 24 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, दुनिया भर में अपना असर बरकरार रखने के लिए ब्रिटेन बना रहे यूरोपियन यूनियन का सदस्य।
Having the United Kingdom in the European Union gives us much greater confidence about the strength of the transatlantic union.
भारत में संसद में जारी गतिरोध पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा,
जनता की आवाज सुनिए, जनता आपसे पूछ रही है आप इसके बारे में क्या सोचते हो, एक्शन तो बाद की बात है, आप सिर्फ ये बता दो कि सोचते क्या हो, नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन।
बताएंगे आपको सोना सस्ता होने की वजह और कबड्डी खिलाड़ियों के बदलते जीवन के बारे में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ब्रिटेन यदि दुनिया भर में अपना असर बरकरार रखना चाहता है तो उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने रहना चाहिए। उन्हें ब्रिटेन को अमरीका का सबसे अच्छा साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान अमरीका में बंदूकों पर नियंत्रण में विफलता उनके असंतोष की सबसे बड़ी वजह रही। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने ईरान से हुए परमाणु समझौते की आलोचना करने वाले रिपब्लिकन्स पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करना कोरी कल्पना ही हो सकती है कि इससे बेहतर समझौता संभव था। वॉशिंगटन में सीनेट समिति की एक बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के 6 ताकतवर देशों ने इस तरह बातचीत की ताकि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म किया जा सके और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अमरीकी एजेंसी नासा का कहना है कि उन्होंने पृथ्वी जैसा ही एक दूसरा ग्रह खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने इसे केपलर 452b नाम दिया है। उनके अनुसार यह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और सूर्य जैसे एक सितारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। साथ ही वह सितारे से उतनी ही दूरी पर है जितना कि सूर्य पृथ्वी से। ऐसे में केपलर का तापमान ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे में वहाँ पानी होने के भी पूरे आसार हैं। केपलर के बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे वैज्ञानिक जेफ कफलिन ने कहा, आप और मैं इसमें से किसी भी ऐसे ग्रह पर नहीं जा पाएंगे जब तक अप्रत्याशित सफलता नहीं मिल जाती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों के बच्चे इन ग्रहों पर ज़रूर जा पाएंगे। केपलर को ढूंढना इस दिशा में पहला कदम है। हम ऐसे ही ग्रहों की तलाश में हैं और हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब हमें ऐसे मिशन लॉन्च करने होंगे जिससे हम पृथ्वी के नज़दीक मौजूद ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें। केपलर के बारे में जानकारी जुटा रहे वैज्ञानिक जेफ कफलिन के शब्द। केपलर नामक शक्तिशाली टेलीस्कोप ने 6 साल पहले पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना शुरू किया था। अब तक इसने 4000 से ज़्यादा ऐसे ग्रहों की तलाश की है जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, लेकिन पृथ्वी से करीब 1400 प्रकाश वर्ष दूर केपलर 452b और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा समानता पाई गई है और इसी टेलीस्कोप पर इस नए ग्रह का नाम रखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने रूहानी से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ईरान मध्य पूर्व में मौजूद संकट से निपटने में मदद करेगा। ईरान के विदेश मंत्री लॉरेंट फाबियास के ईरान के दौरे से पहले दोनों नेताओं ने बात की। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीबीसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि ब्रिटेन दुनिया भर में यदि अपना असर बरकरार रखना चाहता है तो उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने रहना चाहिए। ओबामा ने अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर भी चिंता जताई है और बतौर राष्ट्रपति इसे अपने असंतोष की बड़ी वजह बताया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
बीबीसी के नॉर्थ अमेरिकी एडिटर जॉन सोपेल को दिए साक्षात्कार में बराक ओबामा ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया को सुरक्षित और अधिक संपन्न बनाया है। उन्होंने ब्रिटेन को अमेरिका का सबसे अच्छा साझेदार बताते हुए कहा कि ब्रिटेन यदि दुनिया भर में अपना असर बरकरार रखना चाहता है तो उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा,
Having the United Kingdom in the European Union gives us much greater...
ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन में बना रहना बहुत ही जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने दुनिया को अधिक सुरक्षित और खुशहाल बनाने की कोशिश की है। अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहता है तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। ब्रिटेन की सरकार वर्ष 2017 में एक जनमत संग्रह कराने वाली है जिसमें तय किया जाएगा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहेगा या नहीं। ओबामा ने इसके अलावा अमरीका में बंदूक संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि वे बंदूकों पर नियंत्रण के लिए और अधिक सख्त कानून बनाना चाहते हैं। कीनिया के लिए रवाना होने से पहले बीबीसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वो ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिससे बंदूकों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा,
If you ask me where has been the one area where I feel that I've been most frustrated and most stymied.
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो एक ऐसी कौन सी बात है जो हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है तो मैं बस एक ही जवाब दूंगा और वो है हमारे देश की बंदूकों के प्रति कमजोर कानून व्यवस्था। यह एक सच है कि अमेरिका ही पूरे विश्व में एक ऐसा विकसित देश है जहां बंदूकों के लिए पर्याप्त कानून नहीं है, जबकि यहां आए दिन होने वाली गोलीबारी में इतने ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और अगर आप देखें तो 11 सितंबर के बाद चरमपंथी हमलों में अब तक 100 से भी कम लोग मरे हैं, लेकिन वहीं अगर बंदूकों से जुड़ी हिंसा के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी संख्या हजारों में है। और मेरे लिए इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाल पाना बहुत ही खींच पैदा करने वाला है। अमेरिका में सैंडी हुक स्कूल में वर्ष 2012 में गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने बंदूकों पर नियंत्रण के लिए कड़े उपायों पर जोर दिया था, लेकिन बंदूकों पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक कांग्रेस में पारित नहीं हो पाया। राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि इस मुद्दे का समाधान ना कर पाने की उन्हें पीड़ा है और वे 18 महीने के बचे अपने कार्यकाल के दौरान इस दिशा में प्रयास करेंगे।
भारत में संसद के मॉनसून सत्र में बीते 3 दिनों से लगातार गतिरोध बना हुआ है। गुरुवार को भी बार बार हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में कोई काम नहीं हो पाया। व्यापम घोटाला और ललित गेट मामले में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के संबंधित नेताओं के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, लेकिन मोदी सरकार भी इन मामलों में टस से मस नहीं हो रही। एक रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार।
संसद के मॉनसून सत्र में राजनीति की फिजा अब भी नहीं बदली। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल व्यापम और ललित मोदी की कथित मदद से जुड़े मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग उठाते रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी,
हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हवा में बात करते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी आस्ते 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 जमीन में जा रही है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, आप इस जनता की आवाज सुनिए। जनता आपसे पूछ रही है आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एक्शन तो बाद की बात है, आप सिर्फ ये बता दो कि सोचते क्या हो। नो डिस्कशन Without resignation.
कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी भी झुकने को तैयार नहीं। कल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की फेसबुक टिप्पणी का मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने सियासी घटनाक्रम पर तंज किया था। भाजपा सांसदों ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कंफ्यूज बताते हुए कहा कि उसे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा,
दुर्भाग्य से कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस नहीं चाहती इस देश की आर्थिक उन्नति हो, इसलिए नॉन इश्यूज को इश्यू बनाकर और अपने 2 दिन में 4 स्टैंड कांग्रेस ने बदले हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस कंफ्यूजन में है और हम तो आग्रह करेंगे कांग्रेस को कंफ्यूजन से बाहर आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाए। अगर कहीं उसके पास तथ्य हैं, तथ्यों में कहीं दम है तो वो रखे पटल पर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
लोकसभा में जारी हंगामे की वजह से 2 दिन कोई कामकाज नहीं हो सका, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि स्थिति जल्द बदल सकती है। सुमित्रा महाजन कहती हैं,
पार्लियामेंट चर्चा के द्वारा ही कुछ बात करने और बिल पास करना, कानून बनाना, यही हमारा काम है। और वो चर्चा से ही हो सकता है। तो इसलिए बाकी जो चीजें हैं उसके लिए कई सारे दूसरी जगह है, ये सभी लोग समझदार है, समझेंगे और मेरा विश्वास है हो जाएगा सब।
हालांकि फिलहाल ऐसा कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है जिससे कि ये गतिरोध टूटता दिखे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी,
लगता यह है कि हमारी पार्टियां परसेप्शन बनाने में, शोर मचाने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में जनता को या वोटर को भूले जा रहे हैं। उन्हें जा करके लोगों के बीच में काम करना चाहिए, शायद वही अंतिम और श्रेष्ठ राजनीति है।
राजनीतिक विश्लेषकों की राय भले ही कितनी ही सटीक हो, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में संसद में बना गतिरोध कैसे दूर होगा, ये सबसे अहम प्रश्न बना हुआ है।
संसद में बना गतिरोध कैसे खत्म होगा? मॉनसून सत्र में अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने यही सवाल वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी के सामने रखा।
कुछ समाधान के आसार नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ठान लिया है कि पहले इस्तीफे फिर डिस्कशन, और लेफ्ट का भी ये रवैया है, वो हाउस को चलने ही नहीं देंगे। मुझे लगता है मॉनसून सत्र में कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार बिल्कुल ही उनका नहीं सुन रही है, और वो याद दिलाती है कि यूपीए के दौरान बार बार किस तरह से बीजेपी जब ऑपोजिशन पार्टी थी तो उसने पूरा सत्र ही वॉशआउट किया था 2G के मामले पे, और दिनों दिन सत्र नहीं चलता था। तो आज कहना कि हम किसी चीज के लिए तैयार हैं, किसी भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, ये उनके मुंह से आना, उनको लगता है कि जो आपने किया वो आज हम भी कर सकते हैं। आज जो अनफॉर्चुनेट चीज हम देख रहे हैं वो और भी कड़ा रवैया लिया जाए, आप ये कर रहे हैं तो हम दोहरा करेंगे, आप स्कैम की बात कर रहे हैं तो हम आपके स्कैम स्टेट्स में सामने लाएंगे, जो सड़क की राजनीति है वो प्ले आउट हो रही है संसद में।
ये कहना कि भाजपा ने चूंकि ऐसा किया था तो हम भी वही करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर चल रही है।
हाँ बिल्कुल ढर्रे पर चल रही है। उसको लगता है कि आज हमारे पास एक मौका है। ये लोग घोटालों में शामिल हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं, और बहुत सीरियस चीजें हैं।
सरकार कहती है नीरजा जी कि ये राज्य का मामला है और लोकसभा या राज्यसभा में इस मामले को उठाना उचित नहीं है।
खैर वो सवाल नहीं है, राज्य का है। प्रधानमंत्री होते हैं तो पार्टी के ऊपर होते हैं, उनको रीच आउट करना पड़ेगा। अगर जैसे कांग्रेस का जो गुस्सा है, आप प्रधानमंत्री जम्मू गए तो दामाद के बारे में जिक्र किया, जो सोनिया गांधी के दामाद की तरफ इशारा था, अगर दामाद के खिलाफ ठोस सबूत है तो आप लाइए, पर इस तरह से ताना कसना, वो भी संसद के शुरुआत होने से थोड़ा ही पहले, तो ये किस तरह की मतलब टैक्टिकली भी सही था नहीं था, जब आपको कोऑपरेशन चाहिए, राज्यसभा में बीजेपी के नंबर्स नहीं है, एनडीए के नंबर्स नहीं है, तो कांग्रेस के बिना, लेफ्ट के बिना बिल पास नहीं होंगे, प्रधानमंत्री को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
क्या आपको लगता है कि जिस तरह संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये मामला मीडिया में इतना उछला, बहुत ज्यादा चर्चा हुई, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, तो क्या आपको ये लगता है कि अगर प्रधानमंत्री पहले इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते तो शायद कुछ स्थिति अलग होती?
हो सकता है अगर वो ऐसा करते तो, पॉलिटिकल ऑपोजिशन होता है, लेकिन पास में जैसे वाजपेयी जी के रिश्ते से फोन उठा के बात कर लेते थे, या भाई समझते थे कि भाई लक्ष्मण रेखा ये, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद चलेगी नहीं, कुछ पास नहीं होगा, सरकार ही नहीं चलेगी, गवर्नेंस ही ठप हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को वो कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा ऑपोजिशन पार्टीज का।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, जो बता रही थी संसद में गतिरोध दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष का भरोसा जीतना होगा। संसद का ये घटनाक्रम अखबारों में किन सुर्खियों के साथ छपा है जानेंगे आगे, लेकिन पहले बात सोने की। सोना लगातार अपनी चमक खोता जा रहा है। 2 साल पहले तक जो सोना 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बिका, उसी सोने की कीमत अब 25,000 प्रति 10 ग्राम से भी नीचे चली गई है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक से बात की और पूछा, आखिर इतनी तेजी से सोने के भाव नीचे क्यों गिर रहे हैं?
विश्व की अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक स्थिति में जब जब अशांति, अनिश्चितता के बादल मंडराते हैं, तब सोने के भाव बढ़ जाते हैं। और जब भी अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल सिचुएशन में एक स्थायित्व का, स्थिरता का, शांति का भाव आता है, तब सोने के भाव गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जब लोग परेशान और हताश और अस्थिर चित्त होते हैं तो सोने के मुकाबले उन्हें और कोई दूसरी बेहतर संपत्ति नहीं लगती, और जब लोग स्थिर और ठीक दिमाग से सोचते हैं तो उनको समझ में आता है कि सोने से ज्यादा अनुत्पादक एसेट कुछ नहीं है। आज की तारीख में अगर विश्व को आप देखें, ईरान का डील पूरा हो गया, अमेरिका में रिकवरी आ रही है, विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रॉब्लम में हो लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था में चीजें बेहतर हो रही हैं, तो कुल मिला के एक निश्चितता का, सकारात्मकता का भाव है। कुल मिला के सिचुएशन में सोने के भाव इसलिए गिर रहे हैं कि लोग अब वहां इन्वेस्ट करने के बजाय उन संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं जो उत्पादक एसेट्स, उत्पादक संपत्ति होती है।
आगे और भी इसके दाम कम हो सकते हैं क्या? क्या 20,000 से नीचे भी सोना जा सकता है?
सोना एक ऐसी एसेट है जिसको अगर आप देखें तो इसके भाव कहाँ तक गिरेंगे नीचे, इसका कोई सही आकलन कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि सोने में ऐसा कुछ है नहीं इसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू होती हो, सिर्फ इसकी दुर्लभता में अपने आप में एक वैल्यू है। तो 20,000 से नीचे जाने की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, मतलब उस पर भी कोई असहमत होने का कारण है नहीं, तो 20 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख के लगता है कि 20 के नीचे गिर के 18 से नीचे और जाने का संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ रही।
इससे जो लोग, जो बैंक सोना रखकर कर्ज देते थे और जो सोने में निवेश कर रहे थे, उनके लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ, उसके देखिए सिंपल सी बात है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, ये कंपनियां गोल्ड रख के लोन देती हैं। अभी मान लीजिए 100 रुपए का गोल्ड रखवाया तो 75 रुपए का लोन दिया या 50 रुपए का लोन दिया। अब सवाल यह है कि जब उस गोल्ड की वैल्यू 50 रुपए रह गई तो लोन कितना मिलेगा उस पर? तो कहने का आशय इसमें यह है कि लोन लेने की कैपेसिटी उन लोगों की कम हो जाएगी जो गोल्ड के सहारे लोन लेते हैं, और जिन कंपनियों के पास का गोल्ड का स्टॉक है उनकी अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू कम हो गई। लेकिन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी ठीक ठाक इसमें काम करेगा, और मुझे लगता है कि गोल्ड की कीमतों में लगातार अगर इस तरह की गिरावट देखी जाएगी तो उस तरह की कंपनियां जो इस तरह के रूल्स गोल्ड पे लोन देती हैं उनके बारे में गाइडलाइंस या नए रूल्स हम फिर देख सकते हैं।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक, जो बता रहे थे सोने के भाव इसी तरह गिरते रहे तो सोना गिरवी रखने के बदले कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए नए नियमों की जरूरत पड़ सकती है। ये BBC है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है बताने के लिए अमल चौधरी कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, आज के अखबारों के पहले पन्ने की बात करें तो लगभग सभी अखबारों में संसद के मॉनसून सत्र की खबरें हैं कि किस तरह से आज सत्र का जो कल तीसरा दिन था वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसमें अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, राहुल ने आवाज़ की बुलंद, सुषमा के काम को बताया अपराध। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडिंग दी है, प्रधानमंत्री ने डिबेट की मांग की लेकिन गतिरोध जारी। वहीं द हिंदू ने इस खबर का शीर्षक दिया है, प्रधानमंत्री ने गतिरोध को तोड़ने के लिए उठाए कदम। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने भी इस खबर को प्रकाशित किया है, लेकिन उसकी मुख्य खबर जो है वो कुछ और है। उनकी खबर का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कुछ अधिकार देगी, 14 साल जेल में बिता चुके अपराधियों को छोड़ सकेंगे। वहीं अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, अब वाड्रा पर संसद गरम। वहीं हिंदुस्तान हिंदी ने शीर्षक दिया है, भाजपा सांसद खोलें कांग्रेसियों की पोल। इसमें भाजपा की नई रणनीति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पार्टी ने लोकसभा व राज्यसभा के 28 सदस्य मोर्चे पर उतारे हुए हैं। वहीं अमर उजाला ने हेडिंग लगाई है, भाजपा और आक्रामक हुई, अब वाड्रा वीरभद्र को घेरा। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, राहुल बोले सुषमा ने किया अपराध, होनी चाहिए जेल। वहीं संदीप अगर अन्य खबरों की बात करें तो दैनिक भास्कर की खबर है, 10 उठक बैठक लगाएं तो मेट्रो में यात्रा मुफ्त कर सकेंगे।
कहां की खबर?
ये मेक्सिको सिटी की खबर है, जहां पे इन्होंने एक नया, जो लोगों को मोटापा है उसको, उससे निजात दिलाने के एक नए तरीके की एक नई नीति शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ दैनिक भास्कर में एक और खबर है जिसका शीर्षक है, प्रधानमंत्री जी आपसे विनती है फाइल पर दस्तखत कर दीजिए। इसमें जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके जो आजकल एडवर्टीजमेंट जो चल रहे हैं अखबारों पर, उस पर एक खबर इन्होंने प्रकाशित की है। वहीं दैनिक भास्कर में एक और, अगर आप और देश विदेश की अगर खबरों की बात करें तो उसमें चांदी से जुड़े खबरों की बात है, जिसमें राजस्थान के बाजारों में चांदी में 80% तक की गिरावट आई है। संदीप,
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के इर्द गिर्द नजर आने वाले जानवरों या फिर पक्षियों का पेट कैसे भरता है? वो बीमार होते हैं, उनका इलाज कैसे होता है? पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए वैसे तो कई कानून हैं, लेकिन फिर भी कमाई के लिहाज से कुछ अहम जानवरों या फिर संरक्षित वन्य जीवों को छोड़कर बाकी पशु पक्षी मनुष्यों की दया पर निर्भर होते हैं। ऐसे उदासीन माहौल के बीच कुछ लोगों ने बेसहारा जानवरों और पक्षियों की मदद के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के साथ अमित भास्कर।
दिल्ली के साकेत सिनेमा हॉल के पीछे कूड़े के ढेर के बीच इस टिन और त्रिपाल से बनी झोपड़ी में रहने वाली महिला प्रतिमा देवी कोई आम महिला नहीं है। ऐसे समय में जब इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसे खुद की फिक्र नहीं है, वहाँ ये रोज करीब 250 कुत्तों को खाना ही नहीं खिलाती हैं, बल्कि उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में जगह भी देती हैं और बीमार कुत्तों का इलाज भी करवाती हैं।
पहले मेरे को इतना डॉग के बारे में इतना पता नहीं था, किंतु डॉग से प्यार हमारा शुरू से है। अभी तो काफी हमें सीख लिया जी, यहाँ थोड़ी बहुत इनके साथ इलाज भी करा देते हैं। अभी मेरे का से कम 300 डॉग हो चुका, और हमारे पास से तो कोई काम नाम है ही नहीं। हमें बस एक कबाड़ी बबाड़ी के काम थोड़ी करते हैं, थोड़ी होटल वोटल का कूड़ा वूडा छाटते हैं, छाट के इनके बटारी गुजारी कर रहे हैं। जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, दोनों डॉग वहाँ परेशानी हो रहे, तो हम उसको उठा लेते, उठा के उसको इलाज कराते। काफी डॉग तो हमारा घर पे, यहाँ कम से कम 150-200 डॉग तो घर पे ही रहता है यहाँ, और बाद बाकी जो डॉग है जगह जगह रह रहे, उनको लिया 9 बजे खाना जाता है।
जेम्स हैरियट के शब्दों में अगर कहें तो अगर आत्मा के होने का मतलब प्यार, वफादारी और आदर है, तो इस मामले में जानवर ज्यादातर इंसानों से बेहतर है। दिल्ली के छतरपुर में एक आश्रम केवल कुत्तों के लिए समर्पित है। आश्रम में घुसते ही करीब 700 से 800 कुत्ते आपके स्वागत में खड़े मिलते हैं। विश्राम कुमार द्वारा शुरू किया गया ये आश्रम आज उनकी मृत्यु के बाद कुछ वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जा रहा है। मुदिता उन्हीं वॉलंटियर्स में से एक हैं।
सर विश्राम कुमार के बेटे हैं कुणाल, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। हमारे पास 4 स्टाफ मेंबर्स हैं, वो उनकी सैलरीज देते हैं, एंड बाकी का हमारा सब डोनेशन पे चलता है। एक तो जो वहाँ कुत्ते होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनको तो हम बेरी करते ही हैं, और जो लोग दिल्ली के अराउंड ओन पेट्स को दफनाना चाहते हैं, वो आते हैं यहाँ, अपने पेट्स को दफनाते हैं, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा वो टूम्बस्टोन बनाते हैं। टूम्बस्टोन भी बनाते हैं और हम कुछ घर भी बनाते हैं उनके ऊपर, जिससे उसका ड्यूअल पर्पस हो जाता है कि एक तो आप उनको दफना पाओ, और उसके ऊपर जो हमारे जो प्रेजेंट कुत्ते रहते हैं शेल्टर में, वो भी वहाँ उसके अंदर बैठ सकते हैं।
मानवता का अर्थ केवल मानव की प्रगति नहीं है, बल्कि मानवता अपनी असीम क्षमता से दूसरे जीवन को भी साथ लेकर आगे बढ़ने का नाम है। नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद नाम के दो भाइयों को जब एक बार एक पंक्षी घायल अवस्था में मिले, तब उन्हें उस पंक्षी के इलाज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक तो डॉक्टर आसानी से नहीं मिल रहे थे, और जब डॉक्टर मिले भी तो पंक्षी के मांसाहारी होने के कारण उसका उपचार करने से मना कर दिया। तब से दोनों भाइयों ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू नाम से संस्था की शुरुआत की।
जो बोल रहते हैं इनको दूसरे एनिमल मार के नहीं खा पाते, इसलिए वो बहुत स्लो पेनफुल डेथ मरते हैं भूख से प्यास से। तो कम्फर्ट देने के लिए कि एटलीस्ट अगर उनकी डेथ पक्की है, उनको मरना ही है, तो क्यों ना हमारे घर पे आके वो अपने जिंदगी के आखिरी कुछ दिन गुजार। लेकिन फिर जैसे हमने डॉक्टर्स को बुला के उनका ट्रीटमेंट कराते रहे, तो हमें उससे काफी सक्सेस मिलती रही।
तो क्या पशु पंक्षियों के कोई अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जीवित रहने के लिए ऐसे ही इंसान की दया पर निर्भर रहना होगा? क्या इंसान अपनी तरक्की के लिए यूं ही पशु पंक्षियों को बेघर करता रहेगा? क्या कहता है देश का कानून? बता रही हैं अंजलि, जो कि पेशे से एक कॉरपोरेट वकील हैं और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य भी हैं।
एक तो 1960 का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। फंडामेंटल ड्यूटी है एक आर्टिकल 51AG के, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एवरी एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स। बहुत सी रूल्स भी बनी हुई हैं, ओवरलोडिंग चेक करने के लिए, ज्यादा जो ये मारते बेचारे पशु लोड उठा रहे हैं और उनको फालतू में मार रहे हैं। स्लॉटर भी ह्यूमेन होना चाहिए, ये नहीं कि सड़क पे कहीं भी काट रहे हैं। लाइसेंस स्लॉटर हाउस होना चाहिए, तो ऐसे बहुत कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने तो 100 पेज से ऊपर जजमेंट पास करी है, ह्यूज जजमेंट। उन्होंने तो मतलब ईश उपनिषद से कोट करके इसे बहुत लिखा है।
हमारी धरती ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत संपदा है और यहाँ मिलने वाली हर चीज यहाँ मौजूद हर जीव के लिए है, फिर चाहे वो उड़ते पंछी हों या चलते जानवर, तैरती मछलियाँ हों या रेंगते जीव। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव इस पृथ्वी पर जीने और मरने का समान हक रखता है।
और अब बात कबड्डी खिलाड़ियों की। प्रो कबड्डी लीग से खिलाड़ियों को 10 से 12 लाख रुपए का मेहनताना मिल रहा है। पिछले एक साल में इस लीग से कबड्डी खिलाड़ियों की जिंदगी में कितना बदलाव आया, राखी शर्मा बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में।
जिंदगी दो पालों का खेल है, एक जहां हम खड़े हैं एंड एक जहां हमें जाना है।
टीवी पर जब अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे फिल्मी सितारे कबड्डी कबड्डी कहें तो लोग इसे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते।
थोड़ी लपक चपक, थोड़ी लचक लचक, आया मटक मटक, मैंने दिया पटक, अरे लपक दिया पटक दिया पटक दिया पटक दिया, ले पंगा पंगा।
गांव और कस्बों में खेले जाने वाला कबड्डी जैसा खेल प्रो कबड्डी लीग के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस खेल ने गांव और छोटे कस्बों से आने वाले खिलाड़ियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया है। अनूप कुमार 31 साल के हैं और प्रो कबड्डी लीग में यू मुंबई टीम के कप्तान हैं। 2006 से कबड्डी में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत के लिए खेलते हुए भी जो काम वो नहीं कर पाए वो इस लीग ने एक ही साल में कर दिया, उन्हें घर घर का चेहरा बनाकर।
वहाँ पे तो जैसे हमारा कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था, हम वो खेलते थे, उसको टीवी पे लाइव तो मेरे ख्याल से दिखाया नहीं, उसके हाईलाइट वगैरह दिखाते थे तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था, या मान लीजिए उसकी एड वगैरह नहीं आती थी, डायरेक्ट उसको दिखा देते थे किसी भी चैनल पे स्पोर्ट्स पे, तो लोग बाग देखते नहीं थे, उसको पब्लिक ने देखा ही नहीं। और अभी जो ये लीग हुई थी, लीग से पहले एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा हो गया, लोगों को मतलब ये हो गया कि कबड्डी है क्या चीज यार, इसको देखेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इतनी एड वगैरह कोई भी चीज अगर टीवी पे बार बार दिखाते हैं तो पब्लिक कोई भी सोचती है कुछ ना कुछ तो है इसमें, चलो देखते हैं।
25 साल के हरियाणा के सोनीपत के खिलाड़ी सुरजीत नरवाल पहले सत्र के टॉप 5 रेडर्स में शामिल थे। इस लीग से जिंदगी में आए बदलाव के बारे में सुरजीत कहते हैं,
ये लगा लो कि इससे अलग ही जीवन मिला, अगर प्रो लीग में देखा जाए तो कबड्डी को फिर से जन्म हुआ कबड्डी का, जिसको काफी लोग लाइक करते हैं और हमारे को इतनी संतुष्टि होती है, हर जगह जाते हैं तो हम नाम से जाने जाते हैं।
वही 33 साल के राकेश कुमार तो इस लीग की बदौलत एक टीवी रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं। राकेश प्रो कबड्डी लीग की टीम पटना पायरेट्स के कप्तान है।
फर्स्ट टाइम मैं उस शो में गया था, खतरों के खिलाड़ी में कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबड्डी की वजह से मैं एक रियलिटी शो में मतलब कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आया, तो ये सब कबड्डी के माध्यम से ही मैं वहां तक पहुंचा हूं। एक साल में इतना चेंजेस आ चुका, अच्छे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर मिल रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है और रियलिटी शो मिल रहे हैं, तो मुझे तो काफी खुशी है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो बहुत अच्छा था मेरे लिए।
प्रो कबड्डी लीग की सबसे चर्चित टीम पहले सत्र की विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स है। बॉलीवुड के सबसे नामी बच्चन परिवार के अभिषेक इस टीम के मालिक है। जाहिर है ग्लैमर का असर इस टीम के खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा चढ़ रहा है, कई खिलाड़ी नए नए हेयर स्टाइल अपनाते देखे गए हैं। इस पर टीम के कप्तान नवनीत गौतम कहते हैं,
आप क्रिकेट के जितने भी प्लेयर देखेंगे तो उनके सभी के बाल जो हैं बहुत अच्छे स्पाइकी बाल हैं, फेस पे हमेशा एक मेकअप सा रहता है, उनके पे एक चमक सी रहती है, तो वो सारी चीज अब धीरे धीरे कबड्डी में आने लग गई है।
लीग की रेस में कबड्डी का खेल कबड्डी कबड्डी करते हुए तेजी से बढ़ रहा है, कहने की जरूरत नहीं अब इसके खिलाड़ी भी दूसरे खेलों के खिलाड़ियों से ज्यादा पीछे नहीं रह गए हैं। राखी शर्मा, बीबीसी दिल्ली।
वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन इससे पहले एक बार फिर विश्व समाचार अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ब्रिटेन यदि दुनिया भर में अपना असर बरकरार रखना चाहता है तो उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने रहना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने ईरान से हुए परमाणु समझौते की आलोचना करने वाले रिपब्लिकन्स पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करना कोरी कल्पना ही हो सकती है कि इससे बेहतर समझौता संभव था। अमरीकी एजेंसी नासा का कहना है कि उन्होंने पृथ्वी जैसा ही एक दूसरा ग्रह खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने इसे केपलर 452b नाम दिया है। उनके अनुसार यह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और सूर्य जैसे एक सितारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है, साथ ही वह उस सितारे से उतना ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी सूर्य से। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से फ़ोन पर बात की और दोनों ने इस दौरान एक दूसरे की मदद करने का भरोसा जताया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के पहले अंक में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी।